आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर 6 पर जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में कोई नया टॉपिक शुरू नहीं किया था, तो रिविजन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है। इसमें से जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बताया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो नोट कर लिया था, लिख लिया था। मैं आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और हम आज की क्लास में न्यू टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो शुरू करेंगे। फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 6 पर है, इसमें पूछा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने आपको बताया था कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ इसलिए कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बन गई है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से, वो हट जाए और हमारी रिएक्शन अच्छे से हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी। आप लोगों को कुछ रिएक्शन बताई गई थी, वर्ड इक्वेशन बताई गई थी और आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को 3 पार्ट्स दिए गए थे। पहला पार्ट था, उसमें बोला गया था कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया है और हमें प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आप लोगों को कैसे लिखना था, आप लोगों को लिखना था H2+Cl2 gives 2HCl। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन में, वो था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे लिखना है, 3BaCl2+Al2SO4 whole thrice gives 3BaSO4+2AlCl3। अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2Na+2H2O gives 2NaOH+H2। ये था सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग को एक थर्ड क्वेश्चन भी इसी पेज नंबर 6 पर दिया गया था जिसपे हमने डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों को एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख करके दी गई थी रिएक्शन और आप लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। साथ में उस इक्वेशन के अंदर आप लोगों को हर एक जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके स्टेट्स भी लिखने थे। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों को जब सेंटेंस फॉर्म में कोई रिएक्शन दी जाए तो एक एक वर्ड को आपको समझनी है और साथ में उस वर्ड की कुछ मीनिंग है उसको आपको समझना है और वो हर एक वर्ड जो है वो आपको बताएगा कि जो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेने हैं इक्वेशन के अंदर वो किस तरीके से कौन सा स्टेट उसका होगा। जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको बोला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इसका मतलब है कि आपके रिएक्टेंट्स दोनों के दोनों जो हैं वो पानी के अंदर घुले हुए हैं, एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको इनका स्टेट पता चल गया। वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे आप तो आप लोगों को जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो किस स्टेट में है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को पढ़िए, उसकी मीनिंग को समझिए और उसके बाद अपना केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैंने आप लोगों को इसका मीनिंग भी बताया था कि इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमें प्रेसिपिटेट मिला है, बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिला है जो कि पानी में घुल नहीं रहा। और प्रेसिपिटेट कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक एक वर्ड को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसी के अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ोगे, नहीं एक एक वर्ड को समझोगे तो आप लोग इक्वेशन ढंग से नहीं लिख पाओगे, आपको स्टेट समझ में नहीं आएगी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी स्टेट क्या है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives BaSO4 solid plus 2NaCl aqueous। ये फर्स्ट पार्ट का है। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट भी दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। इसमें आप लोगों को पहले बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो पानी में है, मतलब एक्वस है उसका स्टेट। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, अगेन HCl जो सोल्यूशन आप लोगों के पास है वो भी पानी में आपने घोला हुआ है, एक्वस है आपके पास इसका स्टेट भी। उसके बाद टू प्रोड्यूस का मतलब इसके आगे, टू प्रोड्यूस लिखने के आगे हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स में भी आप लोगों को क्या बताया गया कि टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इसका मतलब प्रोडक्ट में भी जो आपका NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड जो बना है वो कैसा है, वो एक्वस है, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में आप लोगों को मिला है। और कोई भी चीज सॉल्यूशन फॉर्म में है इसका मतलब क्या है कि वो पानी में घुला हुआ है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन जो है इसका मतलब है कि वो घुला हुआ है पानी में, किसी सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर हम लोग आपकी क्लास में जब कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो हम बेसिकली वाटर ही लेते हैं। सो आप लोगों को जब भी कभी लिखा हो कि कोई भी कंपाउंड है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक्वस है, उसकी स्टेट जो है वो हमें एक्वस लेनी है। तो सेकेंड पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2NaOH aqueous plus HCl aqueous gives NaCl aqueous plus H2O in liquid form। इसी तरीके से आप लोगों को मैंने एक एक किस तरीके से रिएक्शन लिखनी है, हर एक कंपाउंड का, एलिमेंट का किस तरीके से लिखना है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। तो मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने वो नोट कर लिया था, क्योंकि वो मैंने आंसर्स बताए थे आपको, लिखने थे उनके आंसर्स, तो आपने नोट कर लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में भी आया होगा कि आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किस तरीके से लिखने हैं। और यहाँ तो हमने बात कर ली कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ रिएक्टेंट्स डालते हैं, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और उनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं होता कि आपने जो रिएक्टेंट डाले हैं उससे अलग कोई प्रोडक्ट बन के आ जाए, आपने जो रिएक्टेंट डाले हैं उन्हीं के बीच में रिएक्शन होगा और उन्हीं में रिएक्शन होके उनमें से ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने रिएक्शन करवाया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में और आप लोगों को मिल जाए नाइट्रोजन गैस, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने तो नाइट्रोजन यूज ही नहीं किया है अपनी रिएक्शन में, रिएक्टेंट के रूप में आपने नाइट्रोजन डाला ही नहीं है, तो आपको नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को प्रोडक्ट सिर्फ उसी एलिमेंट का मिलेगा जिस एलिमेंट को आपने रिएक्टेंट के रूप में यूज किया है, उन्हीं एलिमेंट्स का आप लोगों को हमेशा प्रोडक्ट भी मिलता है। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये आप लोगों ने जितने भी रिएक्शन ऑब्जर्व किए होंगे उसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप लोगों ने जो एलिमेंट लिए हैं रिएक्टेंट साइड में, उन्हीं एलिमेंट के बीच में रिएक्शन होके प्रोडक्ट में वो एलिमेंट किसी और फॉर्म में मिल जाता है, कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है वो उन्हीं एलिमेंट से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जो सबसे पहली एक्टिविटी की थी इस चैप्टर के अंदर में, आपने मैग्नीशियम को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने वहां पर किया क्या, वहां पर आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाई। इसी वजह से मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है तो हमें प्रोडक्ट में भी इन्हीं दो एलिमेंट्स में से कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई बाहर से एलिमेंट मिल जाए। हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें ना ही हम कोई एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अलग से कोई एलिमेंट आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जो रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट लिए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, और ना ही आप कोई एलिमेंट उड़ा सकते हैं, आप कोई एलिमेंट ऐसे ही गायब भी नहीं कर सकते हैं, उस वो कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन ली, उसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और उसे बर्न किया, तो आप लोगों को वहां पर मिला क्या, प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को एक राख मिली जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की थी। आप लोगों को ना मैग्नीशियम की रिबन मिली, ना आप लोगों को ऑक्सीजन मिला, आप लोगों को मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल गया। हाँ, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने अपना फॉर्म बदल दिया, अपना रूप बदल दिया, लेकिन वो किसी और रूप में मिले उसके बावजूद भी वो थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स ही। तो हमेशा हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट यूज हुए हैं उन्हीं के कोई ना कोई प्रोडक्ट होते हैं। अब बस होता ये है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोसीजर अलग अलग हो जाता है। कभी कुछ ऐसा होता है कि जो बॉन्ड्स होती हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन आपने ली तो मैग्नीशियम बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पर, जो मैग्नीशियम है उस एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स उस मैग्नीशियम रिबन में मौजूद थे, और उसकी रिएक्शन जो हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई तो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट होता है उसमें भी बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम मौजूद थे। जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो हुआ क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और इनके बीच में बॉन्ड बनने की वजह से ये दोनों इकट्ठा हो गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए, और इनके बीच में एक नया टाइप का बॉन्ड बना जो पहले नहीं था, और जैसी हमने रिएक्शन करवाई तो इनके बीच में ये बॉन्ड बना जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बाकी सारे रिएक्शंस भी होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एग्जांपल जिसमें आप लोग कार्बन को बर्न करते हैं, कि आपके पास कोई लकड़ी वगैरह है उसे आप बर्न कर रहे हैं। कार्बन कहाँ मौजूद होता है? कार्बन ऑर्गेनिक चीजों में मौजूद होता है, जैसे लकड़ी में या फिर पेट्रोलियम में या फिर डीजल में, इनमें कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। इसे जब आप बर्न करेंगे तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ में और हीट प्रोड्यूस होगी, तो वहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। तो इसमें देखो आपने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाई तो आप लोगों को प्रोडक्ट भी कार्बन और ऑक्सीजन का ही मिला, लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया। पहले वो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, अब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो ये दोनों पास में आ गए, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनके आपस के बॉन्ड टूट जाते हैं और एक नए टाइप का बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से हमें नए टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि जो अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं उसमें किस तरीके से बॉन्ड टूट रहे हैं और किस तरीके से नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना होता है, इसी की वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और इसी वजह से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता चल गया कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर होता क्या है, वहां पर होता ये है कि जो हमने रिएक्टेंट इस्तेमाल किए हैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स पहले से होते हैं, उनके अपने खुद के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए टाइप के बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से नया कंपाउंड हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, नया केमिकल हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं, वो किस आधार पे हमने बांटे हैं, वो इस आधार पे बांटे हैं कि किस तरीके से वो बॉन्ड टूट रहे हैं और किस तरीके से नए बॉन्ड बन रहे हैं। इसी आधार पे हमने अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यहाँ पर आप लोगों को पहले एक्टिविटी 1.4 करके समझना है कि होता क्या है। एक्टिविटी 1.4 में आपको क्या करना है, पेज नंबर 6 पर है ये एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को एक छोटा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। आप लोगों को चूना लेना है और इस कैल्शियम ऑक्साइड को आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको रखना है एक कटोरी में और उसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, पानी उसमें डालना है आप लोगों को। उसके बाद आपने जिस भी बर्तन में या फिर ग्लास में या फिर ग्लास ट्यूब में ये बनाया है, मतलब आप लोगों को एक ग्लास ट्यूब या फिर बीकर टाइप का कुछ भी ले लेना है। यहाँ पर पेज नंबर 6 पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, एक बीकर लिया गया है, उसमें आप लोगों को चूना डाल देना है, कैल्शियम ऑक्साइड डालना है और उसके ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा करके उस पर पानी डाल देना है और फिर आपको उस बीकर को टच करना है या फिर ग्लास ट्यूब जिसमें भी आपने डाला है उसको आपको टच करना है। उसको जब आप टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि धीरे धीरे करके आपका बीकर या फिर ग्लास ट्यूब जो है वो गर्म हो रहा है। आप लोगों को भी पता है कि चूना जो होता है उसके ऊपर जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वहां पर रिएक्शन होने लग जाती है, कुछ वहां पर धुआं सा उठने लग जाता है, गर्माहट सी होने लग जाती है वहां पर। तो वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है ये आपको यहाँ पर समझना है। होता क्या है कि जो चूना है जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 6 पर देखो इक्वेशन 1.13, इसमें आप लोगों को क्विक लाइम लिखा हुआ दिख रहा होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये बताया गया है, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एस लिखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। ये जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा चूना जो होता है वो हमें सख्त मिलता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका फॉर्मूला है CaO, कैपिटल C स्मॉल A कैपिटल O। जब इसका हमने रिएक्शन करवाया है पानी के साथ में H2O के साथ में जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, हमें प्रोडक्ट मिला है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या है, ये हम लोगों के पास एक कंपाउंड बनकर के तैयार हुआ है जब हम लोगों ने चूने के ऊपर पानी डाला। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा पेज नंबर 6 पर इक्वेशन 1.13, CaOH होल ट्वाइस एक्वस है क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है। और क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी बीकर या फिर ग्लास ट्यूब गर्म हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, इस रिएक्शन के होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई जिसकी वजह से हमारा बीकर या फिर ग्लास ट्यूब जो है वो गर्म होने लग गया। तो यहाँ पर आप लोगों को प्लस हीट जो लिखा हुआ दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में वो सिंपली ये बताता है कि इस रिएक्शन के होने के साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई जिसकी वजह से हमारा बीकर गर्म हो गया या फिर ग्लास ट्यूब गर्म हो गया। तो ये तो चलो हम लोगों ने बात कर ली रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पर हमने कुछ सीखना था, हमने सीखना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को अभी तक ये तो बताया नहीं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखो आप लोगों ने यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स लिए, कौन कौन से रिएक्टेंट्स लिए आपने, आपने एक चूना लिया और दूसरा आपने पानी लिया। इन दो रिएक्टेंट्स के बीच में जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना स्लेक लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि चूना और पानी दोनों कंबाइन हो गए आपस में, और कंबाइन होकर के इन लोगों ने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया दोनों रिएक्टेंट के कंबाइन होने के बाद में। तो इसी वजह से हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कंबाइन हो गए, इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया अपने कॉम्बिनेशन होने के बाद में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है पेज नंबर 6 पर, आप लोगों को दिख रहे होंगे लास्ट के 3 लाइंस। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्लेक लाइम। सच अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के तो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख के हेडिंग डालेंगे और वहां पर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके नीचे क्या करना, एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखना और उस एग्जाम्पल में ये लिखना CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। और ये आप लोगों को इक्वेशन दिख रही है इक्वेशन 1.13, ये इसके बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन जब होती है तो उसमें होता क्या है, बेसिकली रिएक्टेंट्स के बीच जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नया जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अलग प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दी जाती है स्लेक लाइम के बारे में। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुताई करी जाती है हमारे घरों में दिवाली से पहले, जब पुताई करी जाती है, वाइट वॉशिंग करी जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, हमने पानी में चूना डाला और उसके अंदर हमने पानी मिला दिया और उसको अच्छे से हमने घोल दिया, तो वहां पर एक चूने का घोल बन जाता है। उस चूने के घोल को हमने क्या कहा, हमने उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा या फिर स्लेक लाइम कहा। इस चूने के घोल को दीवार के ऊपर इसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब व्हाइट वॉश करने वाले आते हैं तो वो कैसे व्हाइट वॉश करते हैं, वो चूना डालते हैं और उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं और उसको वो दीवार के ऊपर लगा देते हैं। और वो दीवार के ऊपर लगने के एक दो दिन बाद क्या होता है कि आप लोगों को एक व्हाइट कलर दिखाई देता है। वो आप लोगों को व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि जो सोल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम लोग स्लेक लाइम भी कहते हैं, वो क्या करता है, जब वो दीवार पर लगा दिया जाता है तो वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके साथ वो रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ही आप लोगों को एक शाइनी फिनिश दिखती है अपने दीवार के ऊपर। और ये आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, आप लोग आ जाओ पेज नंबर 7 पर, आप लोगों को डू यू नो करके दिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑरेंज कलर का एक बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को शब्दों में बताया अभी वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है CaCO3, ये फॉर्मूला मार्बल, जो आप लोगों को पता होगा ताजमहल में भी यूज हुआ है मार्बल, और बहुत जगहों पर जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो कई लोग मार्बल यूज करते हैं, मार्बल के फर्श बनाए जाते हैं, जमीन बनाई जाती है, तो मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 ही होता है। और यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन 1.14। इसमें बताया गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, घुला हुआ होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में होता है, एनवायरमेंट में मौजूद होता है, और इन दोनों के बीच रिएक्शन होने की वजह से वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि सॉलिड होता है, और इसी वजह से हम लोग को एक परत सी नजर आती है अपनी दीवार के ऊपर जिसके ऊपर चूने की पुताई हुई होती है, और वहां पर लिक्विड का फॉर्मेशन भी होता है जो कि H2O होता है और वो भाप बन के उड़ जाता है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता सकती हूँ बर्निंग ऑफ कोल के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोल यानी कि कार्बन होता है, कोल जो है उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम लोग हमारे अंदर बॉडी के अंदर हमेशा यूज करते रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो होता है, शुगर जो है, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है क्योंकि वो C6H12O6 है, तो इसके अंदर भी कार्बन मौजूद होता है। ऑर्गेनिक चीजों के अंदर बेसिकली कार्बन होता है। और कोल जो है, आप लोगों को पता होगा, कोल भी एक नेचुरल प्रोसेस से बना है। कोल जो होता है वो पेड़ पौधों के कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत सालों बाद जब पेड़ पौधे जो होते हैं जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ने की वजह से, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से नीचे जमीन के अंदर, इसी वजह से ये कोल बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं। और ये जो पेड़ पौधे हैं इनके अंदर कार्बन मौजूद था, इसी वजह से हमारे जो कोल होता है इसमें भी ये कार्बन के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल का जो एग्जाम्पल है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कोल जो है जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, हम बर्न जब उसे करते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोल और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल का जो रिएक्शन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2 गैस जो है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास H2 गैस है उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में, और फॉर्मेशन करवा रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल का जो कि लिक्विड फॉर्म में हमें मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 7 पर आप लोगों को इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1.16। इसमें आपको बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लिक्विड का फॉर्मेशन किया है, एक मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड या 2 मोल ऑफ H2O हमने जो बनाया है, ये हमने कैसे बनाया, ये हम लोगों ने रिएक्शन करवा के बनाया है H2 गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ, और 2 रिएक्टेंट्स हमने यूज किए हैं, प्रोडक्ट हमारा सिंगल है, इसी वजह से हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने नोट की होगी बच्चों, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन करवाएं और एक नया ऐसा कंपाउंड बने जो सबके सब रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने के बाद बने, तभी हम कहेंगे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेज नंबर 6 पर आ जाओ, यहाँ पर हमने 2 अलग अलग कंपाउंड्स लिए हैं, 2 अलग अलग हमने केमिकल चीजें ली हैं, हमने यहाँ पर एक चूना लिया है, एक पानी लिया है, रिएक्शन करवा के हमने स्लेक लाइम बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं। लेकिन पेज नंबर 7 पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन करवा के भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसे भी हम केमिकल इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कह रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1.16 जो है, जो कि पेज नंबर 7 पर है, इसमें आपने 2 एलिमेंट्स यूज किए हैं, H2 और O2, दोनों के दोनों गैशियस फॉर्म में है, इनका कोई कंपाउंड आपने यूज नहीं किया, सिंपल एलिमेंट्स ही यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हो, सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और उनके कंबाइन होने के बाद जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड से अलग होते हैं। होता क्या है कि जो कंपाउंड है वो अलग अलग एलिमेंट्स से मिल करके बना होता है, और एलिमेंट अगर अपने खुद के नेचुरल फॉर्म में जो मौजूद होता है कोई सा भी एटम, तो हम क्या कहते हैं कि नेचुरल फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उस एटम का क्या है, एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो H2 फॉर्म में होता है, H2 गैस फॉर्म में वो नेचर में हमें मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो H2 है ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, और इसका रिएक्शन हम दूसरे एलिमेंट के साथ करवा रहे हैं। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन का एलिमेंट है, क्योंकि O2 जो होता है वो अपने नेचुरल फॉर्म में O2 के रूप में ही मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं यूज कर रहे हैं, प्योर हाइड्रोजन का एलिमेंट ही यूज कर ले रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे को किसी भी एलिमेंट का कोई कंपाउंड ही चाहिए, हम प्योर एलिमेंट भी ले सकते हैं। और अगर प्योर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवा के, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करवा के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। नाउ एक और बात, आप लोगों ने जो रिएक्शन की जिसमें आपने चूना और पानी के बीच में रिएक्शन करवाई, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने चूने के ऊपर पानी डालना शुरू किया तो आपके टेस्ट ट्यूब या फिर जो बीकर है वो धीरे धीरे गर्म होने लग गई थी। गर्म क्यों होने लग गई थी? क्योंकि रिएक्शन होते होते मैंने कहा था वहां पर हीट प्रोड्यूस करी जा रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पैदा हो रही थी उस रिएक्शन के होने की वजह से। तो ऐसी रिएक्शन जो रिएक्शन होती है उस वक्त जब वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, अपने होते वक्त जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, वो रिएक्शंस जो अपने होते के साथ हीट प्रोड्यूस करने लगती हैं उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो, यहाँ पर आप लोगों को एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन भी दी गई है, पेज नंबर 7 पर आ जाओ। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एक्टिविटी 1.4 करके जो पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ के लास्ट की 2 लाइन्स है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। उसके बाद आप लोगों को जो लास्ट के 2 लाइन्स लिखी हैं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो है 2 लाइन्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है, इसे नोट कर लो और अपने जो नोट्स बनाना इस चैप्टर के उसमें लिख भी लेना। और जब भी कभी कोई डेफिनेशन लिखते हो तो साथ में उसके एग्जाम्पल भी लिख दिया करो। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है इसकी क्या क्या आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक तो एग्जाम्पल लिख देना पेज नंबर 6 पर 1.13 इक्वेशन जो है, CaO plus H2O give CaOH whole twice plus heat, ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो। और साथ में एक और रिएक्शन आप लोगों को दी गई है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कह लो या फिर कोल कह लो, जो भी ये होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम बर्न करते हैं तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो इनका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, इक्वेशन 1.17 ऑन पेज नंबर 7, CH4 गैस प्लस 2H2O गैस गिव CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आप लोगों की जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, सांस लेने की जो प्रोसेस होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब कैसे होती है ये भी आप लोगों को बता देते हैं। जब आप लोग फूड खाते हैं, कुछ भी आप लोग जब खाते हैं, तो होता क्या है कि जो भी आप लोग फूड खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो पोटैटो राइस ब्रेड कुछ भी खाते हैं या फिर ग्रेप्स खा लिए, कुछ भी खा लिए आप लोगों ने, तो उनमें क्या होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, और ये जो होते हैं कार्बन और कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली, मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। क्योंकि सिंपल अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बात करूं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज होता है वो होता है C6H12O6, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक होते हैं, हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इन्हें डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, और ये ब्रेकडाउन तब हो पाता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है जो कि हम यूज कर पाते हैं, हमारी बॉडी यूज कर पाती है और हम वर्क कर पाते हैं। कोई सा भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें हमारे खाने से मिलती है। वो खाना जो होता है वो बहुत सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसे तोड़ तोड़ कर बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज को भी तोड़ दिया जाता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट यानी कि एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग पेज नंबर 7 पर इक्वेशन 1.18 जो है इसमें आपको बताया गया कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में आता है डाइजेशन होने के बाद में वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 बनाता है और H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, एक्वस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, बॉडी में होता है हमारे, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन कहाँ से उसको मिलती है हमारी बॉडी को, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो भी पानी में घुली हुई होती है, ब्लड में घुली हुई होती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो रिएक्शन करती है ग्लूकोज के साथ में और फॉर्मेशन करती है 6CO2 का, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, ब्लड में घुला हुआ होता है, और फिर वहां पर लिक्विड भी प्रोड्यूस होता है जो कि H2O है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि हम लोग यूज कर लेते हैं वर्क करने के लिए। साथ ही में बच्चों जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वेजिटेबल मैटर का, कंपोस्ट आप लोगों ने कभी बनाया होगा। कंपोस्ट क्या होता है, हम लोग जमीन में मिट्टी में एक गड्ढा खोद देते हैं और उसमें सारा वेजिटेबल मैटर यानी कि कचरा जो होता है, पत्तियां, सूखी पत्तियां या फिर सब्जी का जो कचरा निकलता है हमारा, लकड़ी वगैरह जो हम खाते हैं, मान लीजिए कैबेज खाते हैं हम लोग, जो उसमें से जो भी ऐसा पार्ट होता है जो हम खाने में यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं। तो खाद जब हम लोग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, छिलका या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किचन का जितना भी वेस्ट होता है उसको हम लोग गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, और वो क्या होता है, उसको बैक्टीरिया धीरे धीरे करके डिकम्पोज कर देते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको और छोटा कर देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं। सड़ाने गलाने की जो प्रोसेस होती है इसी को बेसिकली डिकम्पोजिशन कहते हैं। सड़ाते गलाते वक्त बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, ये सब मिल करके जो भी हमने कचरा उसमें डाला है, किचन वेस्ट डाला है, उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के होते वक्त भी क्या होता है, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, जो बैक्टीरियाज और अर्थवर्म इनका ब्रेकडाउन कर रहे हैं वहां पर, वो क्या करते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते वक्त वो भी हीट रिलीज करते हैं, रिएक्शन करते वक्त वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही में बच्चों आप लोगों को याद होगा एक्टिविटी 1.1 जो हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में करी थी, हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमने प्रोड्यूस करा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस टाइम पे हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डार्जलिंग फ्लेम होती है, मतलब एक ऐसी लौ जलती है जो बहुत ज्यादा रोशनी वाली होती है, इसे डार्जलिंग फ्लेम कहते हैं। तो वहां पर क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर बहुत एनर्जी पैदा हो रही है, इसी वजह से लौ जो है वो बहुत चमकदार होती है। और वहां पर प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, वहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के होने के बाद बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के होते के साथ में। तो आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, आपने जो आज पढ़ा है इसको आपने खुद से एक बार रिवाइज कर लेना है, और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।